नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार निर्विशेष वादी पाश्चात्य देश शरीर श्रील प्रभु पील प्रभु श्री कृष्ण कन्या प्रभु नित्यानंद हर सेवा जरी गौ वृंद कृष्णा चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत द्वैत Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितानेन पूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदा कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरि पञ्चकल्पतरुभ्यश्च पिपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महापदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृते नमः। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदये पुष्पवंतो चित्रोषं दोतमोनुदो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय ॐ नमः भगवते वासुदेवाय गौरचन्द्राय पंडरीनाथ की जय। गौनिधाय की जय। प्रभुपाद की जय। एंड ऑल ग्लोरी टू द सन बोथ द डिवोटीज। और राधे नंदन। हाँ आई जस्ट आपके अधिकतर गुरुग्राम के भक्त होने की संभावना है क्योंकि इस्कॉन गुरुग्राम की ओर से ये आज के कथा का कहो या कीर्तन प्रवचन का कहो आयोजन हो चुका है हो रहा है। What?
Ramadhar was saying something.
Saying something. I'm saying and he's also saying. Haribo. Ramadhar, who is it? Haribo. Thank you. अरे वाह, ये कब तक चलेगा? तुम्हारा इंट्रोडक्शन तो समाप्त हुआ, लेकिन ये एक संडे फेस्टिवल लेक्चर है। यस, तो सभी हिंदी जानते हैं कि तो क्या सो मैं पंजाबी नहीं जानता हूँ। तो हिंदी हिंदी ठीक है ना? हाँ, चलेगा कि दौड़ेगा? ओके, तो बोलिए। Ananda. Okay. Hari. Dala? Okay, so Hari. यह संभावना है कि आप अपने अपने घरों में ही विराजमान या विद्यमान होंगे. संडे फेस्टिवल का नाम तो लिया जा रहा है, शायद आपको फीस भी नहीं मिलने वाली होगी. इसीलिए रामभद्र प्रभु जी का ये कथा ही फीस्ट है. एंड देन फिनिश. अपने अपने घरों में आप डिनर ले सकते हो. ऐसा जमाना अभी आ गया कि हम मंदिर नहीं जा सकते. मंदिर सर लॉक्ड, मंदिरों को ताले लगे हैं लॉकडाउन के अंतर्गत. जो भी अत्यावश्यक इसेंशियल फैसिलिटीज खुली है, लेकिन ये भारत नहीं समझता है कि मंदिर भी इसेंशियल है. या मोस्ट इसेंशियल तो मंदिर ही है, भगवान ही है, या भगवान का दर्शन और दरबार ही है. तो मंदिर को खुला रखना चाहिए था, लेकिन क्या कहा जाए. ऐसे हमारे नेता भी है, राजनेता, लेकिन आशा है कि अब वो दिन दूर नहीं है जब मंदिर भी खुलेगा. और फिर हो सकता है नेक्स्ट संडे फेस्टिवल क्या तारीख होगी. हाँ, 31. मे बी नॉट. तो 2 सप्ताह के उपरांत संभावना है संडे फेस्टिवल होगा. और आप मंदिर में आके भगवान के दर्शन, मंदिर में कीर्तन सुनिए, मंदिर में कथा सुनिए, और महाप्रसादे गोविंदे भी हो जाए. तो प्रार्थना करते हैं कि ऐसा समय जल्द से जल्द आ जाए. तो मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है कि नहीं? नहीं है, है. तो मेरे समक्ष भी कुछ भक्त बैठे हैं, तो उनसे वार्तालाप कर रहा हूँ, आपसे भी कर रहा हूँ, लेकिन कुछ आपके उपस्थिति का कुछ पता नहीं चल रहा है मुझे. आप जरूर होंगे या है. तो द ग्लोरीज ऑफ द ह्यूमन लाइफ, मनुष्य जीवन कैसे गौरवान्वित है या महान है. मनुष्य जीवन का महिमा के संबंध में कुछ कहने के लिए मुझे कहा गया है, तो देखते हैं क्या क्या कहते हैं. जो भी कहेंगे, वैसे मनुष्य जीवन महान है ये कहने के साथ साथ और भी कुछ बातें कही जाएगी, लेकिन जो भी कहूँगा सच ही कहूँगा. और सच के अलावा और कुछ भी नहीं कहने का संकल्प हमने बहुत पहले कर किया है श्री प्रभुपाद के चरणों में. तो आपका पुनः स्वागत है. तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी प्रभुपाद, इनका मिलन प्रयागराज में जब हुआ और दशाश्वमेध घाट पर 10 दिनों तक उनका संवाद या वार्तालाप चलता रहा, उसी के अंतर्गत श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कुछ महत्वपूर्ण बातें या मनुष्य जीवन कैसा दुर्लभ है, महान है, विशेष है, इसके संबंध में कुछ कहे तो मैं आपको वो सुना पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। मैं चैतन्य चरितामृत लेके बैठा हूँ और या मैं सोच रहा था कि कृष्ण तो उपदेश दिए अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में रणांगन में, वही कृष्ण अब चैतन्य महाप्रभु के रूप में रूप गोस्वामी को उपदेश दे रहे हैं। वे थे श्री कृष्ण, ये है श्री कृष्ण चैतन्य, लगभग वेद नहीं है, या है तो कृष्ण तो कृष्ण ही है लेकिन श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण है अन्य, तो श्री कृष्ण चैतन्य कुछ एडिशनल ही है, कृष्ण प्लस राधा, तो फिर हो गए श्री कृष्ण चैतन्य। तो ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य और साथ में राधा होने के कारण ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अधिक दयालु है, क्योंकि राधा दयालु है, मनुष्यों पर राधा की विशेष कृपा है, कृपा दृष्टि है। हरी हरी, तो वे कृपालु दयालु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी से कह रहे हैं। छोटी सी बात है वैसे, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे मत ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण 84 लक्ष योनि ते करये भ्रमान। ये संसार जीवों से भरा हुआ है, जीव ही जीव है और वे सर्वत्र है, ब्रह्मांड भरी, कितने महा ब्रह्मांड भरी और कितने हैं? अनंत जीवगण, कितने हैं? अनंत या असंख्य, असंख्य, इसका कोई अंत ही नहीं, इन्यूमरेबल जीव है इस ब्रह्मांड में। केशाग्र शत शतेक भाग पुनः शतांश करी तार सम सूक्ष्म जीवेर स्वरूप विचारी। तो इस जीव का फिर वह सभी जीव जिस किसी शरीर में या फिर धीरे धीरे हमको कहेंगे योनियों में, अभी आगे उल्लेख है, तो सभी जीव किस आकार या किस साइज के हैं? चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कुछ ज्यादा मोटे नहीं है, बहुत छोटे हैं, सूक्ष्म है। केश का अग्रभाग ले लो, दिख रहा है? It's there. तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, वैसे शास्त्र में भी कहा है उसी बात को चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, और वैसे चैतन्य महाप्रभु जानते ही है, ये नहीं कि चैतन्य महाप्रभु ने शास्त्र में पढ़ा फिर पढ़ने के बाद चैतन्य महाप्रभु को पता चला और फिर वो बताना प्रारंभ की, ऐसी बात भी नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, केशाग्र का 100 हिस्से करो, उसमें से एक उठाओ, उसके और 100 हिस्से करो, अंश करो, उसमें से एक उठाओ, मैं भी टू मच, इसको थोड़ा घुमाओ थोड़ा, सॉरी, तो उस साइज का जीव है, फिर वो जीव चींटी के शरीर में हो या हाथी के शरीर में हो, जीव की साइज तो निश्चित ही है। या जीव ही एक ही जीव कभी चींटी के हाथ में तो कभी हाथी के हाथ में तो कभी इंद्र गो जर्म के योनि में या कभी इंद्र के शरीर में, लेकिन जीव का साइज यही रहता है। इसी के साथ वैसे हम लोगों का भी परिचय हो रहा है, हम है मनुष्य लेकिन हम औरों से कुछ मोटे नहीं है, हमारे स्वरूप की दृष्टि से या स्वरूप का जीव का जो आकार है उसके दृष्टि से हम एक है। हम क्या है, हम एक है या एक जैसे हैं, एक नहीं है अनेक है, लेकिन अनेक होते हुए भी एक जैसे हैं। हरी हरी। इसीलिए भी कृष्ण कहे नहीं, यहाँ मैं और ही कुछ कह रहा हूँ, अभी आपको नहीं कहूँगा, छोड़ देते। तो वह तार मध्य स्थावर जंगम दुई भेद, जितने भी जीव है इसके दो विभाजन है, एक है स्थावर प्रकार स्थावर हुआ, दूसरे है जंगम स्टेशनरी एंड मोबाइल, एक स्थान पर स्थिर होने वाले स्थावर और जंगम मतलब घूमने वाले भ्रमण करने वाले, ऐसे दो विभाग हुए। जंगमे तीर्यक जल स्थलचर विभेद, और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आगे कहे कि जो जंगम है भ्रमण करने वाले हैं वे क्या क्या करते हैं या कहाँ कहाँ रहते हैं, जल में रहते हैं, जलचर होते हैं और जमीन पर होते हैं, स्थलचर होते हैं और कुछ नभ में होते, आकाश में होते, नभचर होते हैं, ऐसे अलग अलग स्थानों पर वो विचरण करते हैं, घूमते फिरते हैं, वे जंगम है। तार मध्ये मनुष्य जाति अति अल्पतर, तो इन सारी जो जीव है, फिर अलग अलग प्रकार के जीव है, योनियां है, उसमें मनुष्य योनि अल्प है, अल्पतर, हम माइनॉरिटी में है, अन्य जीवों की तुलना में हम माइनॉरिटी में, हम अल्प है, अल्पसंख्यक कहते। तो शास्त्र में ये भी कहा है, यहाँ तो नहीं कहे हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, इन हमारे शास्त्रों से जानकारी प्राप्त होती, जलजानवलक्षानी, जल में रहने वाले कितने जीव है, नौ लाख है। कृमया रुद्र संख्या कहा, कृमि जीव जंतु कितने हैं, 11 लाख, उसमें से फिर ये वायरस भी आ गया, ये शायद नया नहीं होगा, COVID-19 या कोरोना वायरस, जीवों की संख्या उतनी है, जीवों की संख्या नहीं कहने के बजाय वैसे योनियों की संख्या फिक्स्ड है। तो मनुष्य अल्प है, तार मध्य, तो उसमें भी मनुष्यों में भी संख्या अल्प है, और उसमें कौन कौन है, सभी तो नहीं बताया इस वचन में, लेकिन एक प्रकार ये है, तार मध्य म्लेच्छ, उन मनुष्य में कुछ म्लेच्छ है, मतलब ये मनुष्य नहीं है, लगभग मनुष्य नहीं है, दिखते हैं मनुष्य जैसे लेकिन वो मानव नहीं है, वो दानव है। पुलिंद, पुलिंद नाम की एक जाति है, पुलिंद पुलकश खसा दया, ऐसे भागवत में काफी लंबी लिस्ट दी हुई है। बौद्ध, बौद्ध नास्तिक है, जो वेद को नहीं मानते उनको नास्तिक कहते हैं, वेद को मानने वाले आस्तिक होते हैं। तो बौद्ध वेदों को नहीं मानते तो उनको भी इस सूची में डाल दिया। और शबर, शबर नाम की भी जाति है उड़ीसा में, या और भी कई हो सकती है, उड़ीसा में वो बड़े भाग्यवान हैं, उसे शबर होते हुए भी जगन्नाथ की सेवा करते हैं। धर्मचारी मध्य हय बहुत धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ, तो अभी अभी जो कहा वे अधार्मिक उनकी लिस्ट चैतन्य महाप्रभु ने सुनाई। जो धार्मिक है, धर्म का आचरण करने वाले, उनमें कुछ कर्मनिष्ठ होते हैं, कुछ कैसे, अभी मनुष्य मनुष्यों की बात हो रही है, मनुष्य की बात हो रही है। कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ, तो जो कर्मनिष्ठ है, कर्मण्येवाधिकारस्ते कहने वाले जो है, कर्म करने का अधिकार है, कर्म करो कर्म करो, वर्क इज वर्शिप, या कर्म मिश्र भक्ति करने वाले, ऐसी व्यक्ति भक्ति कर्म मिश्र भक्ति, तो ऐसे कर्म मिश्र भक्ति करने वाले या कर्मनिष्ठो, कोटि कर्मनिष्ठों में एक ज्ञानी श्रेष्ठ। धीरे धीरे कैसे आगे चैतन्य महाप्रभु बढ़ रहे उसकी ओर ध्यान दीजिए। तो कोटि कोटि कर्मनिष्ठों में एक ज्ञानी श्रेष्ठ होता है, कोटि ज्ञानी मध्य हय एक जन मुक्त, और कोटि कोटि ज्ञानी भक्तों में, ज्ञान मिश्र भक्ति करने वालों में, उसमें से कोई कोई या एक एक कोटि ज्ञान या ज्ञान निष्ठ में एक मुक्त होता है। और फिर आगे कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त, पता चला कहां से कहां, इतनी सारी योनियां हैं, उसमें मनुष्य अल्प संख्या में है, उसमें कुछ असभ्य अनसिविलाइज्ड है, उनकी भी सूची बताई, अधार्मिक है। फिर जो धार्मिक है उनमें भी कुछ कर्मनिष्ठ है, तो कोई ज्ञाननिष्ठ है, ऐसे कोटि कोटि ज्ञान निष्ठ भक्त या व्यक्तियों में फिर एक कृष्ण भक्त श्रेष्ठ, एक कृष्ण भक्त श्रेष्ठ। इस पर ध्यान दीजिएगा कि ऐसे सारे सारे ब्रह्मांड का विचार हो रहा है, या केवल एक ब्रह्मांड का नहीं, सभी ब्रह्मांडों का, कोटि कोटि ब्रह्मांडों का एक ओवरव्यू कहिए, इट्स वेरी ब्रॉड पर्सपेक्टिव। अरे संसार की ओर देख के या संसार का अवलोकन करते हुए भगवान ये निरीक्षण, ये ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और हमको समझा रहे हैं, यहाँ तो रूप गोस्वामी को समझा रहे थे, और उसी के साथ हमारा कल्याण या हमें समझ में यह आता है। कृष्ण भक्त निष्काम, अब कृष्ण भक्त का परिचय। क्या कृष्ण भक्त का परिचय? कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, वैसे एक शब्द में ही कृष्ण भक्त का परिचय हुआ। कृष्ण भक्त कौन? निष्काम, अतएव शांत। दुनिया शांत है क्या? दुनिया तो अशांत। स्वामी जी शांति नहीं है, मतलब आते ही अपनी शिकायत प्रारंभ करें, स्वामी जी नो पीस ऑफ माइंड स्वामी जी। और आजकल का तो क्या कहना, संसार इतना परेशान और अशांत है, लेकिन कृष्ण भक्त ऐसे परिस्थिति में भी कृष्ण भक्त कैसे होने चाहिए? शांत। आपका अगर क्लेम है, आप दावा करते हो हम कृष्ण भक्त है, तो फिर आप शांत की होने चाहिए। आप भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत हो गया। जितने भी धार्मिक लोग हैं, चार प्रकार के हो गए। और फिर यह केवल भारत की, इंडिया की बात नहीं चल रही है। भगवान क्यों करेंगे इंडिया की बात? या इंडिया में, भारत में जो लोग हैं उनके धर्म की बात नहीं, संसार में ब्रह्मांड में जहां भी जहां तहां, स्वर्ग या नरक या इस ब्रह्मांड उस ब्रह्मांड में, जहां जहां भी धार्मिक लोग हैं, कितने प्रकार के? हाँ, तीन के चार, चार हो गए। हाँ, एक भुक्ति कामी, दूसरे मुक्ति कामी, तीसरे सिद्धि कामी और चौथे निष्कामी। तो धार्मिक जनों में, लोगों में, मनुष्यों में वैसे मनुष्य जीवन दुर्लभ है। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह ये भव सिंधुरे। तो वह लोगों का मनुष्य जीवन तो प्राप्त है, लेकिन क्या प्राप्त नहीं है? What is this? And what is this for? No, no, finished. I'm finished now. नहीं चाहिए, otherwise take time. No, no, but I'm finished with this. There is no more. It's only a little more. So, तो मनुष्य जीवन दुर्लभ है, लेकिन मनुष्य जीवन में और एक बात को प्राप्त करना और भी दुर्लभ है। तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, किंतु वैकुंठ प्रिय दर्शन मतलब भगवान के भक्त, साधु संत मंडली का दर्शन, उनके साथ मुलाकात, उनके साथ संबंध स्थापित होना, ये क्या है? और भी दुर्लभ है बात। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, इसीलिए उस गीत में कहा है दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। दुर्लभ मनुष्य जीवन को सत्संग में बिताना चाहिए। क्यों? क्या होगा सत्संग बिताएंगे तो? तरह ये भव सिंधुरे, ताकि हम भव सागर से तर सकते हैं। और ये भी किसको चिंता है? केवल हरे कृष्ण भक्तों को छोड़ के, वैसे कोई ज्यादा बात नहीं करते लोग और धर्मों में या कि भगवत धाम लौटने की जो बात है, जाओ देवा छिया गावा देव देई लबिसावा। चलो भगवत धाम लौटते हैं और वहां विश्राम करते हैं। भगवत धाम ही कंफर्ट जोन है या कंफर्ट नॉट पॉसिबल। पदम पदम यत विपदाम न तेषाम। इस संसार में तो पग पग पर विपदा संकट है, तो इसीलिए भी यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए, उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो जाए तो जाए कहाँ कहाँ जाएंगे, भगवत धाम अपने घर, बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। ये कब संभव होगा, जब मनुष्य जन्म भी प्राप्त हुआ और फिर क्या हुआ, तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तो श्रील प्रभुपाद कहाँ करते थे, उन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की ताकि संसार के लोगों को साधु संघ प्राप्त हो, सत्संग प्राप्त हो। इस उद्देश्य से इस हरे कृष्ण आंदोलन की स्थापना हुई या स्थापना की है श्रील प्रभुपाद। और अब इस कान के माध्यम से सारे संसार को साधु संग प्राप्त हो रहा है। तो तत्रापि दुर्लभम मन्ने, तो लोगों को मनुष्य शरीर तो मिले थे या मिले हैं, वो भी दुर्लभ बात है, लेकिन और एक अति अधिक अधिक दुर्लभ दुर्लभतर बात, भक्तों का संग प्राप्त होना। और इस्कॉन ऐसा संग प्राप्त करा रहा है। इस्कॉन क्या, चैतन्य महाप्रभु भगवान ही कर रहे हैं इस्कॉन को निमित्त बना के। या श्री प्रभुपाद की, श्री प्रभुपाद को संस्थापक आचार्य बनाए और फिर उनके शिष्य उनके अनुयायी संसार भर में साधु संग प्राप्त करा रहे हैं। क्योंकि पुनः श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कहा, और वो भी एक गृहस्थ को ही कहा था, चैतन्य महाप्रभु जब बन गए, अतिथि बन गए, मेहमान बन गए, एक यजमान गृहस्थ यजमान के, तो आप जैसे सद्गृहस्थ के, आप यजमान और आपके मेहमान कौन, भगवान। ऐसा कभी विचार आता है कि भगवान आपके घर में आके आपके मेहमान बने। वैसे अगर आपके घर में भगवान के विग्रह की स्थापना हुई है, आपके घर को आपने मंदिर बनाया है, देवघर मराठी में देवघर, कृष्ण घर या राम या गौर निताय घर भवन निवास पर बनाए हो, तो फिर भगवान आए कि नहीं आपके घर में, आपके घर में रहते हैं। वैसे गृहस्थों को घर तो भगवान के लिए बनाने चाहिए, भगवान के लिए और भगवान के भक्तों के लिए। परिव्राजकाचार्य जब भ्रमण करते करते आएंगे आपके द्वारा, तो आप उनको आमंत्रित कर सकते हो अपने अपने घरों में, और वे आएंगे, सत्संग होगा, कीर्तन होगा, तो फिर आपके घर को क्या बनाएंगे वे। जे दिन गृहे ते भजन देखी, गृहे ते गोल छुट्टी हुई है, मैं इसको पूरा कर लेता हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्य, या जीव या जीवों की चर्चा कर रहे थे श्री कृष्ण कर्ष में इनकन। भ्रमीते कौन भाग्यवान प्रसादे पाए। पहले सुने थे कि नहीं? अभी आपको पता कि कहाँ पर ये बात किसने कही और कहाँ पर कही, किस कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में कही, ये भी याद रखिएगा। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको हम पुनः पुनः श्रील प्रभुपाद भी और फिर हम उनके, हम सभी उनके अनुयायी इस बात को दोहराते रहते। ब्रह्मांड भ्रमीते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण, गुरु गुरु पिक्चर में आगे देंगे, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। फिर भगवान ने भेजा किसी संत को, भक्त को, साधु को, महात्मा को, आचार्य को आपके पास भेजा या आपको उनके पास ले गए, तो ऐसा जो मिलन है, ऐसी जो मुलाकात है, न जाने कितनों को हम मिले इस जन्म में, पूर्व जन्म में, मिलते रहते हम लोग, मिलते रहते, ऐसे टकराते रहते, शेक हैंड होता है या लिंगन होता है या फॉर डिनर फॉर दिस, लेकिन उन सभी मिलनों में भक्तों के साथ वाला जो मिलन है या फिर उसमें भी गुरु का मिलन है, गुरु ही मिल गए, तो ऐसा व्यक्ति भाग्यवान, ऐसा मनुष्य भाग्यवान है। और साधु केवल मनुष्यों को मिल के ही मनुष्यों का कल्याण कर सकते हैं, उनको सत्संग सुना सकते हैं और धीरे धीरे उनको महाजनोन गतः सपंथा, उनको मार्ग में लगा सकते हैं। ये मार्ग वैकुंठ की ओर जाता है, आगे बढ़ो या संत जाहिर, आगे देखो संत जाहिर है, अब उनके पीछे पीछे जाते रहो, कहाँ पहुँच जाओगे, सीधे वैकुंठ जा रहा है ये रास्ता, ये मार्ग। महाजनो येन गतः सपंथः, हरी हरी। तो हुआ तो ऐसे मनुष्य जिनको ऐसा संग प्राप्त हुआ है, तथा भी दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम, या ब्रह्मांड भ्रमीते कौन भाग्यवान जीव। तो आई थिंक जो भी इस सत्संग से आज अब जुड़े हैं तो वे निश्चित ही भाग्यवान है। संभावना है कि आप इस्कॉन से पहले से जुड़े हो, संभावना है कि आप भक्तों के संग में हो, या गुरुजनों से भी मिले हो, या शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु को मिले हो। तो वह लेकिन फिर जिनको ऐसा लाभ नहीं हुआ है अब तक, तो उनको भी आप लाभान्वित करा सकते हो, उनके भी भाग्य का उदय करा सकते हो। कैसे? फिर वही बात जो मैं कह रहा था, ये यजमान और मेहमान। तो चैतन्य महाप्रभु जब एक गृहस्थ के, वो ब्राह्मण थे, उनको कुर्म ब्राह्मण आंध्र प्रक्षेत्र है, भावना है कि कुर्म अवतार, कुर्म भगवान का एक ही मंदिर है इस पृथ्वी पर या भारतवर्ष में, और वो है आंध्र प्रदेश में, आंध्र उड़ीसा की बॉर्डर। यस प्रहलाद, गए थे तुम? हाँ, तुम गणेश के नाम पता है। तो वो चैतन्य महा उस कुर्म क्षेत्र के मेहमान बने। तो उस गृहस्थ ने चैतन्य महाप्रभु का अंग संग भी प्राप्त किया। और फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रस्थान कर रहे थे वहां से, उस ग्राम से, उस घर से, और आगे बढ़ रहे थे। तो वो ने कहा, प्रभु प्रभु महाप्रभु, मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो। महाप्रभु, नहीं नहीं, कैसे कहा जा सकता है, वो लोग जानते पता, जब उद्धव को पता चला तो उद्धव भी हट लेके बैठा, ने मुझे भी ले चलना, मुझे पीछे नहीं छोड़ना। लेकिन श्री कृष्ण उसको समझा बुझा के यही कि वे क्या करेंगे, अपना संग प्रदान करेंगे इस दुनिया वालों को। तो वैसे ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कुरुक्षेत्र में उस ब्राह्मण से कहे, नहीं मेरा आदेश है तुम्हारे लिए। क्या आदेश है? जारे देखो त्यारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार अज्ञाय गुरु हैया तारे देश। मेरा आदेश है तुम्हारे लिए, क्या है आदेश? जारे रखो त्यारे को कृष्ण उपदेश। तुम जिनको मिलोगे और इस क्षेत्र में, हाँ, जारे रखो त्यारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार अज्ञा गुरु भैया तारे दे। इस देश में, मैं जिस देश जा रहा हूं उस देश में नहीं, तुम इस देश के हो, इसी देश में, इसी प्रदेश में तुम क्या करो, प्रचार करो। तो जो भाग्यवान बन चुके हैं, इस कौन से जुड़े हैं, अपना तो हो गया कल्याण, तो ऐसे गृहस्थों को चैतन्य महाप्रभु ने, और ब्रह्मचारी सन्यासी तो प्रचार करते ही है, उनका धर्म ही है, लेकिन गृहस्थ को भी प्रचार करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा आदेश दिया। जारे देखो त्यारे कहो कृष्ण उपदेश, मतलब क्या है? भगवद गीता सीधी सी बात है, और भी हो सकता है, लेकिन भगवद गीता का वितरण करना मतलब कृष्ण उपदेश का वितरण। कृष्ण उपदेश क्या है? भगवद गीता कृष्ण उपदेश है। तो भगवद गीता का वितरण करना हुआ कृष्ण उपदेश। जारे देखो त्यारे कहो कृष्ण उपदेश। तो हुआ, ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है, और क्योंकि जैसे समझा ही रहे हैं, केवल इस मनुष्य जीवन में ही संभव है भगवान को जानना, केवल मनुष्य योनि में संभव है, और वो भी सभी के लिए नहीं है। ये भी हमने सुना चैतन्य महापुरुष से, उसमें से असभ्य भी है, उसमें म्लेच्छ भी है, उसमें सभी का नाम नहीं लूंगा, कुछ लोग अच्छा नहीं लगेगा ये सुन के, बौद्ध भी है ये। और फिर कुछ कर्मनिष्ठ भी है, कुछ ज्ञान निष्ठ निष्ठा वाले भी है, और फिर कोटि ज्ञानी मध्य एक मुक्त और कोटि मुक्तों में एक कृष्ण भक्त। तो ये कृष्ण भक्त केवल हम मनुष्य शरीर में ही बन सकते हैं, और किसी योनि में संभव नहीं है। और ये मनुष्य योनि कैसी विशेषता है, या विशेषता है, वैशिष्ट्य है। और इसके संबंध में भी प्रसिद्ध वचन है, आहार निद्रा, मुझे भी थोड़ा समझ, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्येतत् पशुभिर् नराणाम् धर्मो भी एको अधिको विशेषो धर्मेन हीना पशुभिर् समाना। तो आप सुने होंगे लेकिन समझना भी चाहिए सुनी हुई बातों को। तो यह स्पष्ट ही है, कोई कठिन तो नहीं है, लेकिन समझ के और उनको भी समझाना चाहिए। तो मनुष्यों में और पशुओं में, या मनुष्यों में और बाकी सभी योनियां, जितनी भी योनियां हैं, क्रमया रुद्र संख्या कहा, पक्षिनाम दशलक्षानाम क्रमया रुद्र संख्या कहा, और जो वनस्पतयः तीस लाख ये वनस्पतियां हैं, और विंशति मतलब 20 लाख चतुष्पाद चार पैर वाले जो पशु होते हैं उनकी संख्या कितनी है, हाँ तो आप जाके गिनो। लेकिन गिनते गिनते फिर आपको सारे संसार का भ्रमण, क्योंकि हम मनुष्यानाम कितने मनुष्य है, 4 लाख, 4 लाख प्रकार की मनुष्य योनि बताई है। तो 4 लाख तो है, फिर वे कहाँ है, ये सारे पृथ्वी पर नहीं है। तो मनुष्य योनियों के भी जो 4 लाख प्रकार है, तो आपको स्वर्ग में और कुछ प्रकार के मनुष्य या मनुष्य योनि मिलेगी, नरक में और यहाँ पर वहाँ पर शायद और ब्रह्मांडों में। तो ये तो मनुष्य जीवन का यह वैशिष्ट ये है कि केवल मनुष्य जीवन में ही यह धर्म को अपनाया जा सकता है, या केवल मनुष्य ही धार्मिक बन सकते हैं, गधे नहीं बनेंगे। जबकि संत मंडली आ गई, साधु आ गए, सत्संग हो रहा है, तो गधे आ जाते क्या, दे डोंट केयर, थोड़े मच्छर आ जाते हैं लेकिन वो सत्संग सुनने के लिए नहीं आते। साधु का स्वीट ब्लड। तो धर्म केवल मनुष्यों के लिए है, लेकिन कुछ लोग मनुष्य जैसे दिखते तो है लेकिन वो धार्मिक नहीं है, तो फिर वो कौन है, पशुभिर समाना, वो पशु है। और फिर शास्त्रों में उनको क्या कहा है, कैसे पशु, द्विपाद पशु, दो पैर वाले पशु। वैसे नॉर्मली पशु कैसे होते हैं, चतुष्पाद, फोर लेगेड, लेकिन द्विपाद। मनुष्य तो बने हैं लेकिन करते क्या है, अपना सारा जो प्रयास है, उसका उद्देश्य होता है आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इसी से सीमित रहता है उनका, पांचवा कार्य नहीं करते वे, केवल चार कार्य करते हैं। तो कई सारे मनुष्य भी इतना ही करते हैं, इसीलिए का सामान्य एतत् पशुभिर् नराणाम्, ये आहार निद्रा भय मैथुन तो सामान्य है, कॉमन। किन में सामान्य है? पशुभिर् नराणाम्, पशु और नर, या नर और सारे पशु या जीव जंतु या और योनि, सामान्य है आहार निद्रा भय मैथुन। लेकिन धर्मो भी एको अधिक, लेकिन धर्म एक अधिक एडिशनल फैक्टर या फीचर या सर्विस सेवा केवल मनुष्य ही कर सकता है, वो है धर्म। तो गृह थाको वन्ने थाको सदहरि बोले डाको, तो गृहस्थों के लिए अपने अपने घरों में या अन्य स्थानों पर भी क्या करना है इस कलयुग में, गृह थाको घर में रहो या वन में ब्रह्मचारी सन्यासी के रूप में रहो। ऐसे एक समय ब्रह्मचारी सन्यासी भक्ति रसामृत महाराज आज कह रहे थे, प्राचीन काल में ब्रह्मचारी सन्यासी कहाँ रहते थे? वनों में रहते थे। लेकिन इसको अन ब्रह्मचारी कहाँ रहते हैं? शहरों में रहते हैं, या कई बार महलों में रहते हैं, कुटिया में नहीं रहते हैं। वलकल नहीं पहनते हैं। तो गृहस्थों के लिए और ब्रह्मचारियों के लिए इस युग में एक ही प्रकार का कार्य बताया, धर्म बताया है, और वो है गृह धाको वन्य धाको सदा हरि बोले रखो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करते रहो और औरों को करने के लिए प्रेरित करो। और चार नियमों का भी पालन करो, मांस भक्षण से दूर रहो, ये कोरोना वायरस किसका प्रोडक्शन है, उत्पादन, ऐसे कुछ खान पान का बैट्स एंड रैट्स और सांप का सूप बना के पीने वाले, और ब्रेड खाने वाले, कैसा ब्रेड एंड ब्रेड खाने वाले, तो एंड ब्रेड खा खा के चूहे खाने वाले, अगर कोई ऐसा वायरस जन्म ले तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। इसीलिए सावधान। और संसार भर के लोग, अगर भगवान ने दिया हुआ जो डाइट है, धार्मिक बन के या कृष्ण भावना भावित बन के अगर वे क्या करते, भगवान ने दिए हुए डाइट के अनुसार भगवान को भोग लगाते, किसका भोग? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयश्यति, और उसी को ग्रहण करते तो ये कोरोना वायरस नहीं होता और भी कई सारी बीमारियां रोग नहीं होते। रोग होते हैं भोग से, ऐसा सिद्धांत है, याद रखिए ये सूत्र, भोग से होते हैं। तो भगवान ने कहा योगी भव, तुम क्या बनो? योगी भव, योगी बनो। लेकिन संसार भर में क्या प्रचार है? भोगी भव। ये सारा जो सोशल मीडिया, टेलीविजन, दिस दैट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, किसका प्रचार हो रहा है? भोग का, भोग विलास के साधन। इसीलिए भी मैं एक समय किसी सदगृहस्थ के, या शायद उस समय वो सदगृहस्थ नहीं थे, गृहस्थ थे लेकिन, तो वहाँ सत्संग के लिए बुलाया था, तो हुआ तो जहाँ सत्संग हो रहा था उसी कक्ष में, उनके ड्राइंग रूम या हॉल में बड़ा टेलीविजन था, बिग स्क्रीन मेरा, तो हमको अच्छा नहीं लगा, या याद दिला रहा था ओ टेलीविजन मेरे बारे में कुछ कहो, तो हमने कुछ खरी खोटी सुनाई, ये टेलीविजन ईडियट कहीं का, या दुनिया को ईडियट बनाने वाला नंबर वन किसको क्रेडिट जाता है? द टेलीविजन। और मैं ऐसा शायद सच होगा, कहते हैं कि जब व्यक्ति एक आंख से आपकी ओर देखता है तो कुछ अपशकुन माना जाता है, ऐसा आपने सुना हो? एक आंख बंद करता, एक आंख से देखता है आपकी ओर तो फिर वो बुरी नजर है या कुछ, उसका परिणाम ठीक नहीं निकलेगा। मैं सोचा दीजिए टेलीविजन में इसकी आंखें कितनी है, एक ही आंख वाला है वो, तो उस एक आंख को देखते देखते दुनिया का सारा सत्यानाश हुआ। संसार का सबसे अधिक पतन करने वाला नंबर वन, और फिर उसी का आगे विस्तार या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस कहते हैं, तो स्मार्टफोन्स आ गए और सोशल मीडिया एंड दिस एंड दैट, तो इनका कहना ही क्या। तो वहाँ जब सत्संग हो रहा था तो मैंने टेलीविजन के बारे में कहा कि ये बेकार चीज़ है, ये देखने की चीज़ नहीं है, देखने की चीज़ है तो क्या करो, बार बार देखो या हजार बार देखो। ओके, हमने ये भी कहा था वैसे, ये टेलीविजन जो है इसको हमारे देश में, इसको दूरदर्शन कहते हैं, तुमने कहा कि ये दूरदर्शन, टेली मतलब दूर, विजन मतलब दर्शन, दूरदर्शन। या तो आप कोई बम्बई का बॉलीवुड या लॉस एंजलिस का हॉलीवुड का कोई दर्शन कराते हो, ये तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है, ये तो इसी पृथ्वी पर है। लेकिन आप सचमुच दर्शन करना चाहते हो तो क्यों न दूर, अति दूर जो गोलोक है, और वहां के राधा कृष्ण उनका दर्शन क्यों नहीं करते आप? और वैसा दर्शन करोगे तो सचमुच फिर उसको कहा जा सकता है ये दर्शन कैसा है? दूर दर्शन है। तो उन्होंने हमने कही हुई बातों को सुना, समझा ही होगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आए तो हमने देखा और हमने हैरान तो नहीं हुए लेकिन प्रसन्न तो हुए। जहाँ पर उन्होंने टेलीविजन स्क्रीन पहले रखा था, पहले के सत्संग में, उसी स्थान पर उन्होंने राधा कृष्ण का मंदिर बनाया था, और दूर दर्शन कर रहे, दूर से दर्शन, दूर का दर्शन, दूर वाले भगवान को अपने अपने घर में लाकर बिठाए और पास से करीब से दर्शन कर रहे थे। तो वह तो घर वालों, दुनिया वालों या घर वालों, इस पर भी ध्यान दो। तो हम ऐसे कह तो रहे थे कि यह चार नियमों का पालन करो, घर में भगवान है तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, क्या भोग लगाओ भगवान को, नशा पान मत करो, शराब होती है खराब। तो हुआ या वैसे वैसे भी दुनिया खराब और दुनिया में लोग परेशान थे ये कोरोना वायरस के कारण, लेकिन कुछ लोग परेशान इस बात से भी थे कि उनको शराब नहीं मिल रही थी। तो वे सब डिमांड कर, वी वांट शराब, वी वांट वाइन, वी वांट। तो सरकार ने क्या किया, वो खोल दी दुकानें। पहले तो किराना का दुकान खुलता था पहले, और फिर मेडिकल, फिर तीसरा दुकान खोला तो शराब का, और इतनी भीड़ हो गई वहाँ, मारपीट होने लगी, अहम पूर्वम, हाँ हम पहले, हमको पहले बोतल। तो बड़ी समस्या खड़ी हुई। तो फिर देखो हमारे तथा कथित भारत, शर्म की बात है, इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, अब क्या हो सकता है, होम डिलीवरी, वाइन की होम डिलीवरी हो सकती है, वाइन की होम डिलीवरी हो जाए। और फिर एक ही दिन में एक स्टेट में 100 करोड़ रुपए का शराब की बिक्री हुई, 100 crores। अरे अरे, तो इस नशा से तपस्या नष्ट होती है, और हमारा देश तपोभूमि कहलाता है, और देश या पाश्चात्य देश भोग भूमि है, और इस देश का महिमा क्या है, ये तपोभूमि है, लेकिन इस तपोभूमि में शराब की नदियां बह रही है, और इसके जो परिणाम है, स्वास्थ्य पर परिणाम, मन पर परिणाम, मानसिक रोग और कई सारे रोग, ये चार नियम है, नशा पान नहीं करना, मांस भक्षण नहीं करना, पर स्त्री पुरुष संग, स्त्री संग पुरुष संग नहीं करना, जुआ नहीं खेलना। लेकिन जो खेलते हैं जुआ या चार नियमों का जो उल्लंघन करते हैं, वे सब अधार्मिक होते हैं। कली ने चार स्थान मांगे, राजा परीक्षित कोई स्थान तो दीजिए ना, आपके राज में कहीं पर रह जाएंगे कई कोने में। तो राजा ने कहा ठीक है, चार स्थानों पर रह सकते हो। और चार स्थान कौन से थे, द्यूतम, या द्यूत क्रीड़ा होती है, द्यूतम पानम नशा पान इत्यादि, और सुनहा जहाँ मांस भक्षण होता है, स्त्रिया जहाँ वैशागमन होता है, पर स्त्री पुरुष गमन होता है। यत्र अधर्मा चतुर्विधा, तीन चार स्थानों पर क्या होता है, अधार्मिक कृत्य होते हैं, अधर्म होता है। तो फिर जिस देश में या जिन घरों में और जो लोग इन चार नियमों का उल्लंघन करते हैं, मतलब चार प्रकार के महापाप करते हैं, वे सारे हो गए अधार्मिक हो गए। और फिर क्या हुआ, धर्म ही नहीं ना पशु भी समान, ये सारे बन गए पशु। और इसीलिए वैसे इस संसार को या शहरों को भी कहा जाता है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ऑफ एंजॉयमेंट। और फिर भोग से होते हैं रोग। और तो दुनिया बिजी रहती है इस प्रकार। तो सावधान, आप इस कान से जुड़े रहो, संतों से भक्तों से जुड़े रहो, अपने घरों को, घरों के बनाओ मंदिर, भगवान को भोग लगाओ, घरों में कीर्तन करो, गीता भागवत रखो, उसको पढ़ो। तुलसी महारानी की तुलसी महारानी रखो, यथासंभव गाय रखो कुत्ते के बजाय। हाँ, और फोन पर जब भी आप बोलते हो तो हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्ण बोलो। ओके, तो समय किसी के लिए भी रुकता नहीं, अब समय बीत रहा है तो धीरे धीरे हम अपने वाणी को विराम देते हैं और पुनः कभी मिलेंगे जरूर। Why not? हम वैसे हम एक ही परिवार के हैं, वी आर फ्रॉम द सेम फैमिली। आप पराए तो नहीं हो ना, तो मैं कोई परदेशी हूँ, तो जरूर मुलाकातें होगी और बात करेंगे। तो जो अभी सुनने के लिए, आपके श्रवण के लिए धन्यवाद। और श्रवण के बाद थोड़ा मनान्य चिंतन कीजिए और इस पर अमल कीजिए और यथासंभव प्रचार प्रसार कीजिए। और इसी एक करोगे तो भी वैसे जीवन सफल होगा। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हुई लजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। ये प्रचार प्रसार का जो कार्य है या ग्रंथ वितरण का जो कार्य है, प्रसाद वितरण का जो कार्य है, उत्सव का आयोजन करने का जो कार्य है, मंदिर निर्माण का जो कार्य है, ये सारे परोपकार के कार्य हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा ऐसा परोपकार जो करेंगे वे भारतीय, उनका जीवन या वे मनुष्य, उनका जीवन क्या होगा, सफल होगा। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म विल जार, जन्म सार्थक सार्थक होगा। अपने जीवन को सार्थक करो और सुखी रहो, भगवान को प्राप्त करो, भगवत धाम लौटो। शिल्पपाद की जय। और प्रेमानंदे प्रिय बोल।